नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दे दी। ये विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। ये विधेयक भारतीय नौवहन के विकास और भारतीय व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करेगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में समुद्री क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। इस विधेयक में सुरक्षा के विस्तृत पहलू शामिल किए गए। संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित किया था। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों का पुनर्समायोजन करना है।
एसटी वर्ग की जनसंख्या 149,275 अर्थात 1.5 लाख के आसपास होने के बावजूद भी एसटी समुदाय के लिए गोवा विधानसभा में एक भी सीट निर्धारित नहीं थी, तो ये विसंगति पैदा हो गई थी। इसके लिए मैं इस महान सदन के सम्मुख ये बिल लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि चर्चा करके इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। धन्यवाद।
लोकसभा ने कल राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को विनियमित करने का प्रावधान करता है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध लगाता है। युवा और खेल मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों और भारत की भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भारत नीति और स्पोर्ट्स बिल, एंटी डोपिंग बिल, ये काफी महत्वपूर्ण बिल थे कि जिसके ऊपर आज डिस्कशन में अगर ज्यादा पार्टिसिपेशन अगर होते, विपक्ष भी इसमें डिस्कशन करता, तो मुझे लगता है कि हम हमारे देश के खिलाड़ियों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। उसके बावजूद भी आज लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और उसके रिजल्ट जो आने वाले दिनों में, सालों में हमें दिखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने हाल के घटनाक्रम पर श्री जेलेंस्की का पक्ष सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की नीतियों के बारे में श्री जेलेंस्की को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग बढ़ाया जाए तो भारत एक ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रेरित करना समय की मांग और राष्ट्र की आवश्यकता दोनों है। श्री गडकरी ने विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पुणे में प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित बायोवर्स पहल के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब केवल चीनी उत्पादन पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है और चीनी उद्योग को एथेनॉल, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने उद्योगों से पारंपरिक उत्पादों के साथ साथ वैकल्पिक जैव ईंधन के उत्पादन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे महाराष्ट्र में उत्साह देखा जा रहा है। नासिक में नगर निगम द्वारा राजीव गांधी भवन में एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन हुआ, साथ ही एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया जिसमें छात्र, शिक्षक और नागरिक देशभक्ति के नारे लगाते हुए शामिल हुए। हिंगोली जिले के औंधा नागनाथ में केंद्रीय संचार ब्यूरो ने कल 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।